खुदावन यीशु की तारीफ हो। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज के हमारे पैगाम का टॉपिक है खुदा पे निर्भर रहना। खुदा पे निर्भर रहना। आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और उसके बाद में पैगाम को शुरू करेंगे। जिंदा आसमानी बाप, खुदावन यीशु, हम आपके हुजूर आते हैं और आपका दिलोजान से शुक्र अदा करते हैं कि आज पूरा दिन आपने हमारी हिफाजत की, आप हमारे साथ रहे, हमें सारे खतरों से, सारी मुसीबतों से, सारे दुखों से नजात बख्शी। उसके लिए आपका दिलो जान से शुक्र अदा करते हैं और खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं कि आज आप हमें अपना जिंदा कलाम देने वाले हों। और खुदावन आज जब हम आपका कलाम सुनेंगे तो हमारे दिलों को, हमारे जहनों को खोलिएगा ताकि जब हम आपका कलाम सुनें तो हम उसे समझें, उसे कबूल करें और उस पर अमल करें ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। आप हम सबके साथ हुए, हमें अपने फर्मा बरदार बच्चे बनाइए और हमें सिखाइए खुदावन कि हम सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर रहें। आप हमारे साथ हुए और हमें बरकत दीजिए। ये दुआ हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के हमारे पैगाम का टॉपिक है खुदा पे निर्भर रहना। खुदा पे निर्भर रहना। हम सब विश्वासी हैं, यानी हम सब ईमानदार हैं। हम सब ने खुदावन यीशु पे ईमान लाया है। हम ऐसे लोग हैं जिनका ईमान सिर्फ खुदा पे है। हम ऐसे लोग हैं जो खुदा पे भरोसा करते हैं, खुदा के कलाम पे भरोसा करते हैं। अगर अब हम ईमान को बयान करें तो हम ईमान को इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ईमान किसी चीज़ पे भरोसा करना है, किसी पे विश्वास करना है या किसी चीज़ पे उम्मीद रखना है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारा ईमान खुदा पे है तो हमारा ये मतलब होता है कि हम खुदा पे निर्भर हैं। हम खुदा पे निर्भर हैं तो ईमान पूरी तरह से खुदा पर निर्भर होना है। ईमान पूरी तरह से खुदा पर निर्भर होना है। कुछ लोग पूरी तरह से खुदा पर निर्भर रहते हैं, कुछ लोग आधा खुदा पे निर्भर रहते हैं और आधा अपने आप पर निर्भर रहते हैं, अपनी इकबाल मंदी पर निर्भर रहते हैं, अपनी काबिलियत पर निर्भर रहते हैं, अपने दोस्तों पर निर्भर रहते हैं, अपने जान पहचान वालों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन खुदा चाहते हैं कि हम पूरी तरह से खुदा पे निर्भर हों और खुदा इसी बात से खुश होते हैं कि हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हों। हम कितना खुदा पे निर्भर करते हैं ये हमारे अमाल से दिख जाता है। हम कितना खुदा पे निर्भर करते हैं ये हमारे अमाल से दिखता है। क्या हम पहली जगह खुदा को अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं? क्या हम खुदा को पहली जगह अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं या फिर हमने पहली जगह अपनी खुद की इकबाल मंदी को दी है, अपनी काबिलियत को दी है, अपने दोस्तों को दी है, अपने रिश्तेदारों को दी है, अपने जानने पहचानने वालों को दी है? आदम और हवा दोनों ही खुदा को जानते थे, ये दोनों ही खुदा के कलाम को जानते थे, ये दोनों ही खुदा पे निर्भर थे, इन दोनों का ईमान खुदा पे था। लेकिन क्या हुआ जब इन्होंने गुनाह किया? तो तब क्या हुआ जब इन्होंने गुनाह किया? हम ये देखेंगे पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब और पहली आयत से पांच आयत तक। पैदाइश की किताब तीसरा बाब पहली आयत से पांच आयत तक। और खुदा के कलाम में लिखा है, और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदावन खुदा ने बनाया था चलाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानी नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। आमीन। हम 5 आयत दोबारा से पढ़ेंगे। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। आमीन। तो आदम और हवा ये खुदा की मानिद बनना चाहते थे, यानी ये खुद मुख्तियार बनना चाहते थे। खुद मुख्तियारी का मतलब है आज़ादी। हम सब अपने मुल्कों में जश्न आज़ादी के दिन को जानते हैं। वो दिन ऐसा होता है जहाँ जब हम सारे हुक्मरानों से आज़ाद हुए थे। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो ये खुदा की खुद मुख्तियारी से निकल कर ये खुद मुख्तियार बन गए। ये खुदा के कानूनों के अंदर नहीं रहना चाहते थे या ये खुदा के अहकाम के नीचे नहीं रहना चाहते थे, बल्कि ये आज़ाद होना चाहते थे। लेकिन खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि खुदा हमारा ख्याल रख सके, हमारी हिफाजत कर सके, हमें महफूज रखे। तो इंसान की हिफाजत इसी में है कि वो खुदा के कानूनों के अंदर रहे, खुदा के कानूनों के दायरे में रहे, खुदा के अहकाम के नीचे रहे। हम कितना खुदा पे निर्भर करते हैं ये दिखाता है कि हमारा ईमान खुदा पे कितना है। हम खुदा पे निर्भर करते हैं ये चीज़ दिखाता है कि हमारा ईमान खुदा पे कितना है। और जब हम खुद मुख्तियार होते हैं तो वो ये दिखाता है कि हम खुदा पे विश्वास नहीं करते, हम खुदा पे ईमान नहीं रखते और हम अपनी एबिलिटी पे ईमान रखते हैं। हम अपनी खुद मुख्तियारी ये दिखाती है कि हम खुदा पे ईमान नहीं रखते, हम खुदा की काबिलियत पर ईमान नहीं रखते, यानी हम खुदा की काबिलियत पर शक करते हैं। ईमान को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईमान खुदा के कलाम की फरमाबरदारी का एक अमाल है। अब हम देखेंगे कि क्यों हमें खुदा पे भरोसा करना है या हम क्यों खुदा पे भरोसा करें। हम अपनी अंजीले खोलेंगे, मलाकी की किताब उसका 3:6। मलाकी की किताब 3:6 और खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ इसीलिए ऐ बनी यकूब तुम नीस नहीं हुए। हम दोबारा से ये आयत पढ़ेंगे, मलाकी की किताब का 3:6। क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ इसीलिए ऐ बनी यकूब तुम नीस नहीं हुए। खुदा कभी बदलते नहीं, खुदा ला तब्दील है, खुदा कभी बदल नहीं सकते। लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोसी, हमारे जान पहचान वाले लोग सब बदलते हैं, सब बदल जाते हैं। वो आज हमें कुछ और कहते हैं और कल वो कुछ और ही करते हैं और कुछ और कहते हैं। आज वो हमसे कोई और वादा कर रहे हैं और कल वो वही वादा तोड़ देते हैं। लेकिन खुदा ऐसे नहीं है, खुदा ला तब्दील है। वो जो एक बार कह देते हैं वो वही करते हैं, खुदा कभी बदलते नहीं है। तो ये पहली वजह थी कि खुदा पर हमें भरोसा करना है, हमें सिर्फ खुदा पे निर्भर रहना है। अब हम दूसरी वजह देखेंगे कि हमें खुदा पर क्यों निर्भर रहना है। ये वजह हम देखेंगे अय्यूब की किताब में उसके 42 में और 2 आयत। अय्यूब की किताब उसका 42 और उसकी 2 आयत। अय्यूब की किताब उसका 42 और 2 आयत में लिखा है, तब अय्यूब ने खुदावन को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। इस आयत के दूसरे हिस्से को हम गौर से पढ़ेंगे, और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। तो खुदावन का कोई भी इरादा नहीं रुक सकता। लोग भरोसे लायक नहीं होते, लोगों के बहुत सारे मंसूबे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंसान होते हैं इसलिए उनके मंसूबे हमेशा कामयाब नहीं होते, लेकिन खुदावन का कोई भी मंसूबा रद्द नहीं होता। खुदावन कभी भी हारते नहीं हैं। ये दूसरी वजह थी कि हमें खुदा पे भरोसा करना है। पहली वजह थी कि हमें खुदा पे भरोसा करना है, तो पहली वजह थी कि खुदा ला तब्दील है, खुदा कभी बदलते नहीं हैं। और दूसरी वजह ये है कि खुदावन का कोई भी इरादा रद्द नहीं होता। अब हम तीसरी वजह देखेंगे कि क्यों हमें खुदावन पे भरोसा करना है, हमें क्यों खुदावन पे भरोसा करना है। इसकी तीसरी वजह हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 23 बाब, गिनती की किताब उसका 23 बाब और 19 आयत। गिनती की किताब 23 बाब और 19 आयत। गिनती की किताब उसका 23 बाब और 19 आयत में लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपने इरादे बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना किया, या जो फरमाया है उसे पूरा ना किया। आमीन। खुदावन कभी झूठ नहीं बोलते। इंसान झूठ बोलते हैं, अपने कारोबार को कामयाब करने के लिए झूठ बोलते हैं, रिश्ते बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। इंसान हमेशा बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोलते हैं, लेकिन खुदा कभी झूठ नहीं बोलते। और क्योंकि खुदा झूठ नहीं बोलते, इसलिए हम खुदा पे भरोसा कर सकते हैं। ये तीन वजह थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजह हैं कि हमें खुदा पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन ये तीन वजह जो आज हमने सीखी हैं, वो पहली वजह ये थी कि खुदावन ला तब्दील है, वो कभी बदलते नहीं हैं। खुदा का कोई भी मंसूबा या खुदा का कोई भी इरादा रद्द नहीं होता, और खुदा कभी झूठ नहीं बोलते। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखी कि हमें खुदा पे क्यों भरोसा करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारा ईमान खुदा पे है, तो हमारा ईमान हमारे अमाल से दिखना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर खुदा पे ईमान है, तो हमारा ईमान कहाँ से आ रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। हम देखेंगे कि हमारा ईमान कहाँ से आता है और हमारा ईमान कहाँ से आना चाहिए। हम ये देखेंगे रोमियो की किताब उसका 10 बाब और 7 आयत। रोमियो 10 बाब और 17 आयत। रोमियो 10 बाब और इसकी 17 आयत। रोमियो 10 बाब और 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो हमारा ईमान जो है वो खुदा के कलाम से आना चाहिए। खुदा ने बहुत सारे वादे अपने कलाम में किए हैं, बहुत सारे वादे उन्होंने बाइबल में हमें दिए हैं, लेकिन उनके ज़्यादातर वादे जो हैं वो शर्तियाँ हैं। खुदा के ज़्यादातर वादे शर्तियाँ हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कोई काम खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे, तो ही खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेंगे। यानी कि अगर हम अपना हिस्सा पूरा करेंगे, तो ही खुदा अपना हिस्सा पूरा करेंगे। ईमान में अमाल होने चाहिए, ईमान में अमाल होने चाहिए। दो तरह के ईमान होते हैं, एक जिंदा ईमान और एक मुर्दा ईमान। हम देखेंगे यकूब की किताब उसका 2 बाब और 17 आयत। यकूब की किताब उसका 2 बाब और 17 आयत। और खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। आमीन। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर ईमान है, तो हमारा ईमान अमाल से दिखना चाहिए। हम दोबारा से पढ़ेंगे यकूब की किताब उसका 1 बाब और उसकी 22 आयत से 25 आयत तक। यकूब की किताब उसका 1 बाब 22 आयत से 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कर और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। जैसे हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि हमें खुदा का कलाम सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि उस पर अमल भी करना है। अगर ईमान खुदा पर निर्भर रहना है तो ये दिखना चाहिए हमारे अमाल से कि हम खुदा पर निर्भर करते हैं। हमारे खुदा मोजज़ों के खुदा हैं। खुदा ने हमेशा लोगों की ज़िंदगियों में मोजज़े किए हैं जो खुदा पर निर्भर रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। खुदा के लिए मोजज़े करना, ये हम सब के लिए तो मोजज़े हैं, लेकिन खुदा के लिए ये कुदरती बात है, क्योंकि खुदा ईमान से खुश होते हैं। अब हम एक मिसाल देखेंगे खुदा के कलाम में से, एक बेवा की मिसाल जिसने अपना ईमान इमाल के साथ दिखाया, हम उसके बारे में देखेंगे। दूसरा सलातीन, उसका 4 बाब, पहली आयत से 7 आयत तक। दूसरा सलातीन, उसका 4 बाब और पहली आयत से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। और अंबिया जादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीसा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम, मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदा से डरता था, सो अब फर्ज हुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीसा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन अनायत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। ये यहाँ पे एक बेवा है, एक बेवा औरत जिनके शौहर मर चुके हैं और ये बहुत गरीब हैं। इनके पास घर में कुछ भी नहीं है सिवाय थोड़े से तेल के। इनके 2 बेटे हैं जिनकी परवरिश इन्होंने करनी है, और अब जिंदगी को और भी मुश्किल बनाने के लिए इस औरत के शौहर के कर्ज ख्वार आए हैं अपना पैसा वापस लेने। और उनका ये भी मंसूबा है कि अगर ये पैसा नहीं देती तो हम इसके बेटों को ले जाएंगे और उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। इस औरत के हालात पर गौर करिए। एक गरीब बेवा, घर में उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस औरत में ईमान था और इसने अपने ईमान को दिखाया। इसने ये दिखाया कि ये खुदा पर निर्भर करती है अपने अमाल से। इसने क्या किया? पहली जो चीज़ उसने की वो ये की कि ये सबसे पहले खुदा के बंदा के पास गई यानी अलीसा के पास गई और उसने रोते हुए अपनी सारे हालात इसे बताए। इसका मतलब कि इसने सिर्फ खुदा पर भरोसा नहीं किया बल्कि खुदा के बंदा पर भी भरोसा किया। दूसरा जो काम इन्होंने किया वो ये था कि जो खुदा के बंदा ने इन्हें सलाह दी थी उस पर इन्होंने अमल किया। जो खुदा के बंदा ने इन्हें सलाह दी थी उस पर इन्होंने अमल किया। हम ये देखेंगे दूसरा सलाती उसका 4 बाप और अब हम 3 आयत से 6 आयत तक देखेंगे। 3 आयत से 6 आयत तक। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन अनायत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंधेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। तो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उधेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं, तब तेल मकूफ हो गया। आमीन। इन्होंने सिर्फ खुदा पे ही भरोसा नहीं किया बल्कि इन्होंने खुदा के बंदा की सलाह भी मानी। और हम देखेंगे अब कि जब इन्होंने खुदा के बंदा की सलाह मानी और जो खुदा के बंदा ने इन्हें करने के लिए कहा था इन्होंने किया तो इनके साथ क्या हुआ, ये हम 7 आयत में देखेंगे। दूसरा सलातीन उसका 4 बाप और 7 आयत। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। खुदा इस औरत के ईमान से बहुत खुश हुए, इसीलिए खुदा ने इसकी ज़रूरतों को पूरा किया, इसे पैसे मुहैया किए, इतने पैसे इसे मुहैया किए कि इसने कर्ज भी अदा कर लिया और बाकी पैसों से ये अपना और अपने फर्जंदों का इनका आराम से गुजारा हो सकता था। अब सोचिए अगर हम ऐसे हालातों में होते तो हम क्या करते, या अगर हम इस औरत की जगह होते तो हम क्या करते। शायद सबसे पहले तो हम अपने दोस्तों पर निर्भर करते, अपने रिश्तेदारों पर निर्भर करते, अपने जान पहचान वालों पर निर्भर करते और आखिर में हम अपने पड़ोसियों की मदद मांगते। पर इस बेवा ने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने इसके ईमान को इज्जत बख्शी। आमीन। अब हम एक और मिसाल खुदा के कलाम में से देखेंगे, एक और बेवा की जिसने अपने ईमान को अपने ईमान के साथ दिखाया, जिसने ये दिखाया कि वो खुदा पे पूरी तरह से निर्भर करती है। हम ये देखेंगे मरकस की अंजील में उसके 12वें बाप में। मरकस की अंजील उसका 12 बाप और 41 आयत से लेकर 44 आयत तक। मरकस की अंजील उसका 12 बाप और 41 आयत से 44 आयत तक। और खुदा के कलाम में लिखा है फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं और बथेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी 1 ढाला डाला। उसने अपने शुगिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज़्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बथेरत से डाला मगर इसने अपनी नदानी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाली। आमीन। यहाँ पे भी एक बेवा है, गरीब बेवा, उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय 2 दमड़ियों के। लेकिन इनके पास भी ईमान था। इन्हें ये पता था कि ये हदिया मुझे मैंने देना ही है, तो इन्होंने ये हदिया दिया। इन्होंने अपने ईमान में, यानी अपने ईमान के साथ इन्होंने अमाल भी दिखाए, अपने ईमान के साथ इन्होंने ईमान इमाल भी दिखाया। इनके पास जो कुछ था इन्होंने वो सब दे दिया। इन्होंने पूरी तरह से खुदा पर ये निर्भर रही, ये पूरी तरह से खुदा पर निर्भर रही। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम इसकी जगह पे होते तो हम क्या करते? अगर हम इस बेवा की और जगह होते तो हम क्या करते? शायद हम सबसे पहले तो गिनते, हम गिनते कि अगर हम दे देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, और अगर हम दे देंगे तो हम जो बचेगा उस पे हमारा गुजारा हो पाएगा या नहीं। हम ये सारा कुछ सोचते और हम सही तरह से गिन गिना के फिर बाद में शायद हम देते, या शायद फिर जब हम देखते कि ये तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा नहीं, जब हम ऐसा सोचते कि हमारे लिए नहीं बचेगा तो शायद हम देते ही नहीं। लेकिन इस बेवा ने दिया, इसलिए इसने इसने इसलिए दिया क्योंकि इसके पास सच्चा ईमान था, और इसने अपने ईमान को अपने अमाल से दिखाया। इसने दिखाया कि ये खुदा पे निर्भर है। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है कि खुदा ने इसे बरकत दी, लेकिन ऐसा जैसा यहाँ पे लिखा है कि खुदावन देख रहे थे, खुदावन बैठे देख रहे थे, तो ये पक्का है और ये हमारा ईमान है कि खुदा ने फिर इसे जरूर बरकत दी होगी, जरूर खुदावन ने इसकी जिंदगी में मौजजा किया होगा, जरूर खुदावन ने इसकी जरूरतों को पूरा किया होगा। आमीन। तो यही आज का पैगाम है कि हमें लोगों पर निर्भर नहीं करना है, हमें खुदा पर निर्भर करना है, हमें खुदा पे भरोसा रखना है। हमें खुदा पे भरोसा इसलिए रखना है क्योंकि वो ला तब्दील है, क्योंकि वो कभी बदलते नहीं हैं। खुदा कभी बदलते नहीं, ना ही वो बदल सकते हैं। और दूसरी वजह जो हमें खुदा पे भरोसा रखना है वो ये है कि खुदावन का कोई भी इरादा कभी रद्द नहीं होता। खुदावन का जो भी मंसूबा होता है वो पूरा होता है, खुदा जो सोचते हैं वो करते हैं। और तीसरी वजह ये थी कि खुदा कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए हमें खुदा पे भरोसा रखना है, हमें खुदा पे निर्भर रहना है, हमें खुदा पे ईमान रखना है, हमें खुदा से मदद मांगनी है ना कि लोगों से। हमें पूरी तरह से खुदा पे निर्भर करना है, हमें खुदा पे भरोसा रखना है, और हम खुदा पर निर्भर करते हैं ये हमें अपने अमाल के साथ दिखाना है। आमीन। तो ये आज का हमारा पैगाम था। आए हम सब मिलकर अब दुआ करेंगे। ज़मीन और आसमान के मालिक कादर मुतल्लिक खुदा बाप, हम आपके हुजूर आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं आपके ज़िंदा कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा। खुदावन आज हम आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हमें आप पर निर्भर रहना है। हमारी मदद करें खुदावन कि हम सिर्फ आप पर निर्भर रहें, आप पर भरोसा रखें, आप पर ईमान रखें और आपके सच्चे बच्चे बने। आप हमें छूए खुदावन, आप हमें बरकत दीजिए, आपका फजल हमारी ज़िंदगियों में रहे, आपकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। आप हमें अपनी बादशाहियों के अपनी आप हमें अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल करें, और हमें छुएं और हमें अपने बच्चे बनाएं। खुदावन हमारी मदद करें कि हम आपके कलाम पर अमल करें, हमें तौफीक बख्शें कि हम आपके कलाम के मुताबिक चलें और आपकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। आपका शुक्र अदा करते हैं और ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।